Pocket Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमित.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड द मंथ्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन द नेगेटिव जोन. सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,600. एशियन मार्केट्स क्लोज विद कट्स. European indices trading with losses, and National Payments Corporation of India implements a new set of UPI rules starting today.
आर्थिक सुर्खियों में, अगस्त माह के पहले कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 24,600 से नीचे दर्ज हुआ. एशियाई बाजारों में भी नुकसान का दौर. यूरोपीय शेयर सूचकांकों में भी गिरावट. और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज से नए UPI नियम लागू किए. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. अगस्त माह के पहले कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर रहा. अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा शुल्क लगाए जाने की आशंकाओं के मद्देनजर निवेशक सतर्क रहे. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% की गिरावट से 586 अंक लुढ़ककर 80,600 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.8% के नुकसान से 203 अंक लुढ़ककर 24,565 के स्तर पर दर्ज हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.6% की गिरावट दर्ज हुई.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड द मंथ्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन नेगेटिव टेरिटरी. कंसर्न्स ओवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ एंड पर्सिस्टेंट फॉरेन फंड आउटफ्लोस वेट ऑन इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट. सेंसेक्स शेड 586 points, 0.72%, to close at 80,600. Nifty fell by 203 points, or 0.82%, to settle at 24,565. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed with deeper cuts. The mid-cap index has slipped around 1.4%, and the small-cap index lost 1.6%.
सेंसेक्स पैक के 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में सन फार्मा 4.5%, टाटा स्टील 3% और मारुति 2.6% के नुकसान से बंद हुए. मुनाफे वाले शेयरों में ट्रेंट 3.2%, एशियन पेंट्स 1.4% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.2% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, FMCG bucked the trend, rising over 0.4%, while all other sectors ended low. In the top laggards, healthcare as well as telecommunications both slipped over 2.4% each. Metal and oil and gas declined more than 1.9%, and focused IT fell around 1.9%.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे की मजबूती से 87.54 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स 100.1 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. पुनीत, बाजार में अमरीकी शुल्कों का इतना दबाव है, ये उसका असर है या बाजार अपनी भूमिका अभी बहुत सतर्कतापूर्ण तरीके से निभाना चाहता है, सारी घटनाक्रमों को मद्देनजर रखना चाहता है? हालांकि 1 अगस्त का दिन जरूर बीता, 7 अगस्त की एक तलवार अभी भी लटकी है. क्या लगता है कि शुल्कों का दबाव कब तक ये साफ हो पाएगा और तब तक बाजार की दशा और दिशा इसी तरह से लुढ़कती पड़कती नजर आएगी?
अमित, आपने जो कहा कि इस समय बाजार की जो नजर है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर है, उसमें मुख्य फैक्टर तो डेफिनेटली जो अमेरिकन टैरिफ्स की बातचीत चल रही है और किस प्रकार से वो टैरिफ इम्प्लीमेंट होंगे, क्या उनका फाइनल रूपरेखा होगी. अभी भी ये साफ नहीं है कि कितना फाइनल टैरिफ होगा जो अमेरिका लगा सकता है भारत की एक्सपोर्ट्स पर. उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो पूरे विश्व के बाजार हैं वो पूरी अनसर्टिनिटी से एक गुजर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो पूरा एक विश्व की अर्थव्यवस्था को डोमिनेट करता है, क्योंकि उसकी करेंसी की वजह से, सेटलमेंट ट्रेड सिस्टम्स की वजह से, बैंकिंग की प्रणाली जो है, उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको लेकर अमेरिका की काफी सत्ता रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और वो अभी वहां पर बहुत अनसर्टिनिटी है। तो इसलिए बाजारों में जनरल हम देख रहे हैं कि काफी नर्वसनेस है, ना सिर्फ भारत में, करीब करीब सभी बाजारों में। आज एशिया के बाजारों में काफी गिरावट थी। यदि आप देखें तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो आपने बताया डॉलर इंडेक्स जो करीब 97 के आसपास चल रहा था, डॉलर इंडेक्स 100 के आंकड़े को फिर पार कर गया है, यानी डॉलर स्ट्रेंथन होता है। जब भी डॉलर स्ट्रेंथन होता है उसका असर यह होता है कि वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। जब भी डॉलर वीक होगा आप देखेंगे पैसा आएगा, और जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा वो पैसा इमर्जिंग मार्केट से विड्रॉ होता है, क्योंकि जो निवेशक है उनको पैसा निकालने की ज्यादा वहां पर प्रेशर होता है। तो इसके चलते भी हमने देखा कि एफआईआईज ने भारतीय बाजारों में पिछले 7 दिनों में करीब 25,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है शेयर्स की, वहां भी हमको दबाव आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि रुपी डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट, एफआईआई सेलिंग, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे सख्त फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव प्रेशर डाल रहे हैं बाजारों में, उसी का हम असर देख रहे हैं।
एक आम निवेशक की जो अवधारणा होती है बाजार में, अगर इतने सारे दबावों के बावजूद भी अगर भारतीय बाजार, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, तकरीबन 80,000 के स्तर को बनाए रखने में अभी भी कामयाब है, और निफ्टी की बात करें तो 24,000 के स्तर से ऊपर है, क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि बाजार की जो अंतर्धारणा है और बाजार कि जो इनसाइड स्टोरी है वो अभी भी बहुत मजबूत है, सिर्फ हमें ट्रिगर की जरूरत है।
अमित, आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया और उसको एक फोकस उस पर आप लाए कि एक तो हमारे ऊपर काफी प्रेशर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ये मैं ज्यादातर हमने जितनी बात करी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को इस वक्त प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अंदरूनी जो हमारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है भारत की इकोनॉमी की, वो भी एक फैक्टर है, बहुत स्ट्रांग फैक्टर है। और यदि मैं कहूं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, देखिए बाकी मैक्रो फैक्टर होते हैं सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है यानी फिस्कल डेफिसिट क्या है, आपके रेवेन्यू कलेक्शंस की ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स क्या है, ये भी हमारे अर्थव्यवस्था को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो बहुत मजबूत हैं भारत के, और इसी वजह से हम इसको कुछ हद तक आप कह सकते हैं हम झेल पा रहे हैं जो प्रेशर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि देखिए ट्रांजिटरी प्रेशर्स हमारे ऊपर रहेंगे, बट बिकॉज ऑफ आर डोमेस्टिक स्ट्रेंथ आई थिंक वी विल गो गेट थ्रू दिस।
इन रियल टाइम राइट नाउ द यूएस डॉलर इंडेक्स इज एट 98.97, सो व्हाट इज लीडिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉलर? इज इट बिकॉज ऑफ द नेट एक्सपोर्ट्स? Is it on the positive side? Are they in surplus? Are they in deficit? Or is it because the demand for dollars in the international trade has gone up based on the deals that the US has struck with Japan and the European Union? What is the state of the dollar right now specifically?
So primarily when we measure dollar strength, we look at the demand and supply of dollars. So if America is importing more and exporting less, then dollar will be technically, you know, to some extent weaker. What we have seen is that because of these tariffs, and that's just one aspect. There are other aspects of dollar strength also. But from trade perspective, if you look at the deals that and the kind of environment which is there in USA, that their imports are going to come down. Because they have imposed tariffs on them, they will, of course, earn some revenues from it. But at the same time, I think the demand for dollars overseas will decline because of the trade policies they are following. And therefore, I think dollar domestically is becoming stronger because they'll be, they will run a less deficit, trade deficit.
Today in the stock market, coming back to Sensex and Nifty, Nifty IT has fallen by 1.9%. We are talking about 652 points that the index has fallen. Metal has fallen by 183 points. And from India's export perspective, we export IT services and we export metals as well. So how do you see these Trump tariffs affecting us right now?
So three sectors have primarily been affected. One is, of course, IT sector that you spoke about. The other sector which really went down today was pharmaceuticals, because we export a very large quantity of medicines to America. And thirdly, of course, we have metals sector which is affected. So clearly, these are the export-oriented sectors which have been affected, which are supposed to be affected by this time.
Puneet, question earlier was about the earnings being affected of metal companies and IT companies. To what extent are the tariffs going to impact net exports for India? Because we have a story with Amit Goel as well right now. Amit will be reading that. But just to give a background, is there a baseline tariff or is the effective tax rate 25% now?
So, Arjun, from what we know, and we have very limited information as of now from US government, it appears that the tariffs minimum will be 25%. But we have seen, for example, on copper, which is a very important metal of import for America, the tariffs have been imposed at 50%. So, clearly, there are different slabs for tariffs, but I think the minimum rate will be 25%, plus definitely some more for various sectors.
Puneet, in sari ghatnakram ke beech mein kya aisa nahi lagta ki bar bar America ka ye maksad hai ki sirf kahin na kahin shulkon pe kuch tor marod ya apne hiton ki zyada raksha ki sake. Halanki ye charcha ko main jari rakhunga, uske pehle ek khabron se rubru kara lete hain. America ke rashtrapati Donald Trump ne kal Bharat aur European Sangh sahit anek deshon par uch shulk lagane sambandhit karyakari adesh par hastakshar kar diye hain. Yah adesh 7 agast se prabhavi hoga. Isse shulk dare 41% tak badh jayengi. Trump ke anusar shulk mein ye badhotri anuchit vyapar ghate aur rashtriya suraksha jokhimon ko santulit karne ka prayas ka hissa hai. Adesh ke anusar Syria par 41%, Laos aur Myanmar par 40%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक, सर्बिया और कनाडा पर 35% शुल्क वृद्धि की गई है. भारत पर 25%, जबकि पाकिस्तान पर 19% का शुल्क लगाया गया है. पुनीत, ये सारी जो ट्रंप प्रशासन जो कर रहा है, क्या इससे हमारे पास ये समझने के पर्याप्त कारण है कि वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है, या हम कहीं इसमें उम्मीद की किरण भी देखते हैं? जो 1 अगस्त से लागू होना था उसको 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया, और शायद क्योंकि एक बीच का एक रास्ता भी निकालने की दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं, या भारत के दबाव भी काम कर रहे हैं जो ढके छिपे ही सही लेकिन स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं.
देखिए अमित, जो ट्रेड टॉक्स की जो सिचुएशन है काफी फ्लूइड है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, हालांकि काफी बातचीत में हम काफी आगे हैं उनसे, हैं काफी फोकस है भारत पर जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं अमेरिका के, उसमें भारत का शुमार नहीं होता, उसमें गिनती नहीं होती. सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर उनके चाइना है. चाइना से अमेरिका जो है काफी कॉम्प्रोमाइज की बातचीत चल रही है. पहले काफी झगड़ा हुआ, 150% से ऊपर टैरिफ हुए, उसके बाद वहां पर भी नरमी पेश की गई. सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर उनका कनाडा है, उसके साथ मेक्सिको है, फिर यूरोपियन यूनियन है, उसका जर्मनी है. भारत का जो नंबर आता है वो काफी नीचे आता है ट्रेडिंग पार्टनर्स में. उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा भारत को लेकर वहां पर गर्मा गर्मी गहमा गहमी हुई है अमेरिका के ट्रेड टॉक्स में. मुझे लगता है कि यदि हम बाकी जो एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो बाकी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की देखते हैं, वहां भी काफी हद तक, चाहे जापान हुआ, चाहे यूरोपियन यूनियन हुआ, या यूके हुआ, इवन मेक्सिको एज ऑफ यस्टरडे, वहां पर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया. मुझे उम्मीद है कि भारत के साथ भी हम कोई ना कोई बीच का रास्ता जल्दी ही निकाल लेंगे.
Well, let's in our related news right now inform our listeners. External Affairs Ministry today said India and the US share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values and robust people-to-people ties. Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said this while briefing media in New Delhi.
India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward.
On India-US defense ties, Mr. Jaiswal said India has a strong defense partnership with the US, which has been strengthening over the last several years. He said there is potential for this partnership to grow further under the India-US compact for the 21st century. Responding to a query on India-Russia ties, the spokesperson said bilateral relationships with various countries stand on their own merit and should not be seen from the prism of a third country. He stressed that India and Russia have a steady and time-tested partnership. Puneet, coming back to the third item of trade export for India, which is oil and gas refined products that India exports, and it's a very important part also of our current account deficit, is oil and gas. And before the Trump announcement of penalties to be imposed on India for exporting crude oil from Russia, NATO already had spoken about imposing secondary tariffs penalty as well. What does this mean for oil and gas companies in India? Nifty Oil and Gas fell by 171 points today. So apart from oil and gas, we have metal being impacted as well, and information technology. What does it mean for oil and gas now?
So, Arjun, I think first thing, this oil and gas business is very sensitive business for India, because we are dependent on global imports for meeting our energy needs. So we have dependence there, and therefore we are trying to pursue an independent policy as far as procuring these goods are concerned. Interesting thing is that 30, 40 years back, India was very dependent on global large economies. If you go back to 60s, we were dependent for food security. We had to import food items from America, particularly to meet our requirements. We were dependent for foreign exchange. We were dependent for defense equipment. Today's India is very different. Today's India is, in fact, we are self-sufficient in very large number of goods and services. Oil and gas, of course, is one of the items that we sorely lack. And that is where I think large players on the global stage, they're trying to pressurize us. Fortunately, India has the strength to stand up for itself. Going forward, yes, the oil trade will be recalibrated for sure. But I'm sure given our macroeconomic stability, and I can't emphasize that enough, with that, those numbers, strong revenue collections, fiscal deficit, which is under control, GDP, which is fourth largest in the world, I think we should be able to get through this.
Well, Nifty defense should be affected as well, because the sanctions that America is effectively trying to impose on India in terms of penalties is not only in procuring oil from Russia, but also defense products. And today, a Nifty defense actually went down by 161 points, that particular index as well. So we're not only talking about oil and gas, but we're also talking about defense products that we import from Russia.
So as far as defense products are concerned, it's very interesting that we are not major exporters to USA. So we are exporting our defense equipment to South Asian countries or in countries in Africa. It is our supply chains which will be affected, because we procure a lot of equipment or inputs for manufacturing our defense equipment. So I think we will face some challenges there. I have no doubt that these are challenging times for us. I'm not saying there is no problem. There is a problem. There is going to be difficult times ahead for us. But I think we are more than capable of facing these times. We will be able to weather them. It is not as if we'll buckle under this pressure. Of course, we'll face some slowdowns, some difficulties, but we'll get through.
नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा कर सुधारों की योजना और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बढ़ने से शेयर सूचकांक कोस्पी 3.8% लुढ़क गया। हांगकांग का हैंगसेंग 1%, जापान का निक्के 0.6%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक लगभग 0.5% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.3% की गिरावट से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.5% से 2% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
सो व्हाट्स योर टेक ऑन द एशियन मार्केट्स राइट नाउ, बिकॉज इट्स मेंशनिंग साउथ कोरिया, इट्स मेंशनिंग जापान, नाउ द यूएस हैज एंटर्ड इनटू अ डील विद जापान विद टैरिफ्स ऑफ 15%, विद साउथ कोरिया इट्स 25%, सो दे आर इन द सेम बोट एज इंडिया। हाउ आर द स्टॉक मार्केट्स गोइंग टू रिएक्ट, नॉट जस्ट नाउ but in the short to medium term?
So stock market has not welcomed this approach. If you look at what has happened with Japan, there was a trade deal and there was a lot of optimism about it. And then there were questions about it. And they were not clear whether what kind of investments would be made. Similarly, in South Korea, the South Korean companies have been complaining that the trade deal really, really hurt them. So my guess is that the world markets are already factoring in this this impact on local businesses, on global trade. It is not only that Asia will lose or Europe will lose. My guess is that even America is going to be suffering a lot because of this.
Now news from the U.S. stock market. U.S. stocks failed to hold on to an earlier rally and ended with cuts on Thursday. The Dow Jones Industrial Average dropped around over 0.7%. The S&P 500 ended more than 0.3% down, while the Nasdaq Composite Index ended flat. What's your take on the U.S. stock market right now and the economy? Because macroeconomically, if you look at the latest figures on employment for the month of June, they've added jobs. For the month of July also, the American economy has added jobs. But what is their position in terms of their corporate earnings. A lot of tax cuts being announced under the big, beautiful bill of President Trump. But how is the market reacting to the U.S. stock market?
So, Arjun, U.S. stock markets, of course, have been ruling at record highs in last several days. But if you look at the markets closely, they are really being driven by high valuations in IT stocks, the so-called Magnificent Seven stocks, Google's and Amazon and Netflix.
Artificial intelligence is supposed to be the savior.
It appears to be. So far, in fact, the numbers which have come out from IT sector in America, the technology companies, they seem to be doing, justifying the fact that investments in AI have paid off well. But I think these are early days. We still need to wait and watch how American economy turns out over the next 6 months. And that is what the US Fed has also said. They have said that we'll wait for a few months before we can pass any judgment on whether the economy is doing better or not.
What about the bond market? Because the yield on their treasuries, whether it's 1 month, 3 month, 6 month, 1 year, 2 year, 10 year, or 30 year, has actually come down, which is showing a strengthening of the U.S. economy. If you look at the bond market right now, earlier the yields were touching 5%, and there were concern about what's happening.
Yield is about 4.4% right now on 10 year yield, if you 10 year paper, if you see, but it has strengthened because the U.S. dollar has strengthened, and whenever dollar will go up, we'll see the yields should go down a little bit, which has happened, but I don't think there's significant change in yields as of now.
In more news, National Payments Corporation of India, NPCI, has implemented a new set of Unified Payments Interface UPI rules starting from today. Under the new rules, name of the recipient will be shown to the sender before each transaction. Each UPI app will allow users to check the bank balance 50 times a day. UPI apps will also be able to limit or stop balance inquiry requests to reduce the load on UPI during peak hours. Customers will now be able to see the list of banks linked to their mobile number. In case of unconfirmed payments, users will be able to check the payment status only 3 times, with a minimum time gap of 90 seconds between attempts.
बैंकिंग नियम संशोधन 2025 के प्रमुख प्रावधान आज से लागू हो गए। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के मानकों को और प्रभावी बनाना है। इससे निवेशकों और जमाकर्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऑडिट में सुधार होगा। अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य अधिकतम ब्याज सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये करना है। ब्याज सीमा में वर्ष 1968 से कोई बदलाव नहीं हुआ था।
In more news, IMD, India Meteorological Department, has said that the second half of the southwest monsoon season is expected to bring above normal rainfall. Overall, rainfall is likely to exceed 106% of the long period average across the country. Moving on to the oil market, crude oil prices edged down today. Brent crude was trading 0.8% down at $71.13 per barrel. And WTI crude was also trading 0.8% down at $68.71 per barrel when reports last came in. The entire geopolitics is based around oil extraction, its refining, and its transportation. What is the status right now of the oil market based on this?
So, Arjun, interestingly, while there's so much noise about this oil trade in the world, so America is almost hyperventilating about India's trade with USSR, with Russia in terms of imports of oil, and everybody else seems to be so concerned. Surprisingly, oil prices have been very stable. In fact, throughout the entire turmoil in the Middle East and then the trade talks and kind of slumps that we saw in the markets, oil prices have largely remained in the range of $65 per barrel to about $75 per barrel, which is very stable, very comfortable for India. So it tells me that the supply of oil in the market appears to be very comfortable. Because if the supply was not comfortable, then any disruption would have immediately led to some kind of a spike in the prices. So my guess is that while there is a lot of noise and talk about oil prices or oil markets, the truth is that the oil supply situation appears to be the fundamental situation seems to be quite stable. And I'm very hopeful that it will remain in this tight range and we will be comfortable.
नवे डॉलर थे सरफा बाजार पे। सरफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज लगभग पूर्व स्तर 98,780 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पे रहा, जबकि चांदी आधा प्रतिशत के नुकसान से 1,09,690 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर नजर आई।
At the multi-commodity exchange, gold for the August contract was trading over 0.3% down at 97,713 rupees per 10 grams, while silver for the September contract was trading 0.5% down at 1,09,425 rupees per kilogram when the reports last came in.
पुनीत, अगर भारतीय बाजारों के साथ साथ वैश्विक बाजारों की बात करें तो कॉमेक्स पे भी जो सोने का रेट है वो तकरीबन $3,400 से ऊपर का है, तकरीबन 1.7% की वहां पे भी बढ़त है, और चांदी भी $37 से ऊपर है. हम अगर बात करें अभी सोने चांदी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को भी हमने देखा वो भी 100 के आसपास पहुंच गया है, इस समय सोना कितना सोना है और चांदी और सोने का जो रेशियो था, भावों का जो रेशियो था वो चूंकि पीछे सुधार हो रहा था, क्या हमारे पास शेयर बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए इसको मानने के पर्याप्त कारण हैं कि हम दिवाली पे सोने और चांदी का एक नया स्तर हम देख पाएंगे और वो दोनों का आपस का रेशियो भी सुधार होगा?
अमित, सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है आंसर करना इतने कम समय में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए जो ग्लोबल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें डेफिनेटली डिमांड जो गोल्ड और सिल्वर के वो काफ़ी स्ट्रांग है. इनफैक्ट हमारे पास अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी सुनी है हमने कि रशियन सेंट्रल बैंक ने गोल्ड और सिल्वर, अनडिक्लेयर्ड गोल्ड और सिल्वर उन्होंने खरीदना शुरू किया है फॉरेन एसेट्स के लिए. तो मुझे लगता है कि डिमांड रहेगी इन दोनों की. हालांकि अभी क्योंकि डॉलर इंडेक्स क्योंकि बढ़ा था तो गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट प्राइसेस हुए, बट आने वाले समय में आप जो कह रहे हैं डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ सकती है.
चलिए पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों तक बताने के लिए धन्यवाद.
धन्यवाद.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
Benchmark domestic indices end the month's first trading session in the negative zone. Sensex sheds over 500 points. Nifty settles below 24,600. Asian markets close with cuts. European indices trading with losses. And National Payments Corporation of India implements a new set of UPI rules starting today. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.